बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भारत माता की जय। गंगे मैया की जय। गो माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वैः शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण शमये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। नवा अध्याय के दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्र मिदमुत्तमं प्रतख्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थितः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरण में वंदन। आप सभी भक्तिमती माताएं भक्तजन भाइयों, भगवान श्री कृष्ण गीता जी के नौवां अध्याय पर जब प्रकाश डाला तो ये गीता जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या है, और भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो बड़ा अद्भुत है। एक तो देखो श्री कृष्ण महागृहस्थ हैं, एक दो बेटा बेटी नहीं है, आपके 16,108 रानियों से भी ज्यादा हैं उनके पास, भगवान के पास, और एक एक देवी के यहां 10-10 लड़के बच्चे हैं महाभारत के अनुसार, 10-10 बेटा बेटी हैं। और उस समय द्वापर युग में कृष्ण को ये ज्ञान नहीं था कि हमारे घर के बेटे कहां घूम रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो पोस्टमैन का काम जो है ना नारद जी करते थे, उस समय डाकिया थे, सारा खबर देते थे कि आपके बेटा संबरासुर के यहां है, आपके बेटा बाणासुर के यहां पहुंच गया है। ये सब कथा जो है ना श्रीमद् भागवत पुराणों में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों में महागृहस्थ बताया। सबसे बड़ा गृहस्थ कोई दुनिया में है तो एकमात्र महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन इतने होने पर भी कृष्ण जी को और शंकर जी को, श्री कृष्ण भगवान को ऋषिकेश कहा गया, अच्युत कहा गया, और भगवान शंकर को जो है ना कामारी कहा गया। आपने अपने नेत्रों से जो है ना कामदेव को भस्म किया, शिव जी ने भस्म किया, जो कामदेव है उसको भस्म करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान महाराज लीला रचा करके महाराज के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि ये जो लीला है ना काम विजयी लीला है। देखो ये जो लीला है काम विजयी, और भगवान शिव ये भी सिद्ध करते हैं कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में जगदम्बा है और ये भी सिद्ध होता है कि काम विकार नहीं है। साथ में माता जी है संग सती जग जननी भवानी, साथ में देवी है, कथा सुनने भी आप गए हैं अगस्त के आश्रम पर, और कथा सुनते सुनते कथा का श्रवण भी किया है, फिर भी कोई काम वासना नहीं है, क्रोध नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम इसह इति ऋषिकेश। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, ऋषिक उसके जो मालिक, उसके जो इस आप हैं, इसलिए ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम इसह, जो इंद्रियों के प्रधान है, जो जितेंद्रिय है, उस सच्चिदानंद ब्रह्म को ऋषिकेश कहते हैं। और ऋषिकेश के साथ अच्युत शब्द का प्रयोग भी विष्णु सहस्त्र नाम में आया है। अच्युत जिसका धर्म ज्ञान वैराग्य का च्युत नहीं होता, नाश नहीं होता, जिनके जीवन में धर्म मर्यादा ज्ञान रहता है। इसलिए कुछ लोग जब बोलते हैं कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हम कहते हैं कि कृष्ण भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जो लीला है, उनका जो दिव्य जो स्वरूप है, उनकी जो कथा है, वो भी तो मर्यादा है। ब्राह्मण सुदामा जी ने कहा कि क्या करें, ठंडी बहुत लगी है इसलिए हम चना खा रहे हैं, दांत कटर कटर हो रहा है कुछ दांत के द्वारा। श्री कृष्ण भगवान पोरबंदर में, सुदामा जी का जो जन्मभूमि है वो पोरबंदर है गुजरात का, और उस पोरबंदर के निवासी उज्जैन के महाकाल में जब विद्या अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण आया और बलदेव के साथ कृष्ण भगवान आए और लकड़ी चुनने के लिए गए, तो गुरु माता जी ने जो चना दिया था वो तीनों का बंटवारा था। लेकिन चना खाने का काम जो है ना सुदामा जी करते हैं और कहते हैं कि ठंडी में जो है ना दांत की कड़कड़ आवाज है। श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि वास्तविक में ये तो बड़ा झूठ कह दिया। तो देखो जिस श्री कृष्ण भगवान के सामने उनके सखा जब झूठ बोला तो कृष्ण भगवान चुप हो गए, मौन हो गए, और मौनी बनकर के जब रहे तो भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वैष्णवी शक्ति उसको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप चुप हैं, मौन हैं, क्या बात। तो भगवान ने कहा कि देखो ये ब्राह्मण है, परम भक्त है, लेकिन आज झूठ बोला। तो उस महाशक्ति जी ने सुदामा जी का जो श्री था, जो लक्ष्मी था, उसको अपहरण कर लिया और माथे पर दरिद्रो भव कह करके श्राप दे दिया। ये दरिद्र बन गए, लेकिन उस दरिद्रता का नाश किसने किया? कृष्ण ने किया। जो दरिद्रता उसके जीवन में आया उसका भी नाश उस परमेश्वर ने किया। इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम होने पर भी जितने भी कृष्ण का वांग्मय लीला है वो सब जो है ना मर्यादा के अनुसार ही आधारित है। इसलिए यहां पर कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मियम सुसुखम कर्तुम अव्ययम इदम उत्तमम पवित्रम राज विद्या राज गुह्यम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो गीता जी के नौवां अध्याय है इसको राज विद्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी की जब व्याख्या की तो गीता जी का जो श्लोक संख्या है 700 है और 700 श्लोक के अंदर 541 श्लोक जो है ना भगवान की वाणी है, 541 ऐसे। और उसके बाद जो श्लोक आए हैं एक धृतराष्ट्र का आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्व मामकः पांडवा सेव किम कुर्वत संजय, राजा धृतराष्ट्र का। लेकिन आगे एक श्लोक आया है जो राजा दुर्योधन का आया है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये किसका श्लोक है? दुर्योधन का। पश्येताम पश्येताम पांडुपुत्राणाम, हे द्रोणाचार्य एताम पांडुपुत्राणाम पश्य, ये पांडवों के बेटे को तो देखो आप। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, हे आचार्य हे गुरु एताम पांडुपुत्राणाम पश्य, इनको देखो ये कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं, कितने बड़े विद्वान हैं कि आज गुरु जी के ऊपर शस्त्र उठा रहे हैं। ये व्यंग्यात्मक भाषा। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, अकेले नहीं आए हैं, बहुत बड़े बड़े सेना लेकर के बैठे। महती चमुम बहुत बड़ा सेना। इसलिए पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, इनको आप देखें। ये जो शब्द है ना दुर्योधन का है, गीता जी के शंकरानंदी व्याख्या में दुर्योधन उवाच भी नहीं लिखा है। जो शंकराचार्य के जो भाष्य है उसमें तो पहले अध्याय की कोई विषय ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन शंकरानंद महाराज जी ने जब अपने ही गीता बनाया, उनके ऊपर भाष्य लिखा भगवत पाद के ऊपर, तो शंकरानंद की जो विषय है नमः शंकरानंद गुरुपादम मुझे जन्मने स विलास महामोह ग्राह ग्रासे कर्मणे, जो अज्ञान रूपी जो विलास है कार्य है उसको नाश करते हैं। तो पंचदशी कार विद्यारण्य मुनि महाराज ने अपने सदगुरु शंकरानंद जी की पहले ही मंगलाचरण की। पंचदशीकार जो है ना, उनके जो गुरु हैं स्वामी जो है ना, शंकरानंद मुनि हैं। और ये शंकरानंद जी की जो है पंचदशी में पहले मंगलाचरण की गई। नमः शंकरानंद गुरु पादाम्बुज जन्मने स्विलास महामोह ग्राह ग्रासे कर्मणे। और शंकरानंद जी महाराज जब गीता जी के ऊपर व्याख्या करते हैं तो थोड़ी सी व्याख्या की कि यहां दुर्योधन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच जब लिख सकते हैं वेद व्यास जी, गीता जी के जो प्रत्यक्ष दृष्टा है वो भगवान वेद व्यास जी है। और भगवान वेद व्यास जी जब गीता जी के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो दूसरे नंबर पर दुर्योधन उवाच लिखने में आपत्ति क्या था? कुछ नहीं था। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो है ना यहां खड़ा है, बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन दुर्योधन उवाच लिखना जो है ना पसंद नहीं किया उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा। राजा दुर्योधन कुछ बोले और हम उसे लिखें तो भगवान वेद व्यास जी को दुर्योधन कहना भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा लिखो मत। जिस दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी है इसलिए उसको युधिष्ठिर सुजोधन कहते थे, उसके हाथ में लक्ष्मी का निवास, वो जितना भी दान देवे ना लक्ष्मी बढ़ती थी, वो कम नहीं होता था। राजसूय यज्ञ में कोई कहेगा कि फूलमाला दो तो 5 देता था वो, एक साबुन मांगे दो 5 देता था, वो बढ़ता था। लेकिन राजा दुर्योधन को ये पता नहीं था कि मेरे पैर में मेरे हाथ में लक्ष्मी जी का निवास है। इसलिए दुर्योधन का जब अंतिम समय हुआ तो महालक्ष्मी जी ने गोद में लेकर के दुर्योधन को कहा कि जिस समय भीम शंख की गर्जना करेगा दुर्योधन तू जाना मत, मेरे गोद में है तुझे कोई मार नहीं सकता। जिस समय ब्यास सरोवर में कुरुक्षेत्र में वो पानी के अंदर गया तो लक्ष्मी जी उनको गोद में लिया, ये देखो। इसलिए यहां पर एक शब्द है राज विद्या, विद्या नाम राजा राज विद्या। ये जितने भी विद्या है आपके पास विद्या कितने हैं? संस्कृत बांग्वे में विद्या 14 है। 14 प्रकार के विद्या की कथा जो है ना छांदोग्य उपनिषद में आया है। जिस समय भगवान नारद सनत कुमार के पास गए, कहा कि मैंने बहुत से विद्या पढ़ी है लेकिन शांति की अनुभूति नहीं है, मुझे शांति प्राप्त करना है, आप बतावें। तो ब्रह्मर्षि संत कुमार जी ने कहा कि भाई नारद जी तुमने कौन कौन सी विद्या पढ़ी है? तो कहा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष गंधर्व शास्त्र अर्थशास्त्र, सारे विद्या मैंने पढ़ी है, 14 प्रकार के विद्या। और 14 प्रकार के विद्या का अध्ययन देवर्षि नारद जी ने अपने पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनके मानस पुत्र होने के कारण उन्होंने अध्ययन किया। ये इसलिए ये विद्या जो है ना 14 प्रकार की विद्या मनु महाराज ने मनुस्मृति में बताया। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष गंधर्व आयुर्वेद इत्यादि अनेक जो विद्या है उस विद्या में 14 प्रकार के विद्या शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन वो विद्या का अर्थ यहां पर ये कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इदम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम। ये जो राज विद्या है, राज विद्या का दोनों अर्थ है, राज्ञः विद्या राज विद्या, एक अर्थ है ऐसे राज्ञः विद्या। राजा शब्द का षष्ठी के एक वचन में राज्ञ शब्द का प्रयोग होता है, राजा राजानो राजानः ऐसे व्याकरण में आता है। और उस व्याकरण की पद्धति में षष्ठी विभक्ति का एक रूप है राज्ञ, राज्ञ विद्या राज विद्या। ये जो विद्या है अध्यात्म विद्या, ये राजाओं के यहां था, ये कथा है। राजाओं के यहां पहले इस विद्या जो है ना ब्राह्मणों के से हट करके राजाओं के यहां चला गया। देखो नारायणम पद्मभवम, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, और नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, वशिष्ठ को प्राप्त हुआ, शक्ति पुत्रम, फिर शक्ति को प्राप्त हुआ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तत्पुत्रम, उसके पुत्र जो है ना पराशर जी को प्राप्त हुआ, और पराशर के यहां से जो है ना भगवान द्वैपायन वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ, और वेद व्यास के यहां जो है ना एक परंपरा अलग हो गई, ये अलग परंपरा। वेद व्यास के साक्षात तो जो पुत्र थे ना वो सुखदेव जी नहीं थे, सुखदेव शिव शंकर के अवतारी पुरुष थे, क्योंकि जब उन्होंने भगवान शिव जी ने माता जी को कथा कही और उस कथा का श्रवण शुक पक्षी के जो चमड़ा है त्वचा है वो जो पेड़ में लगा हुआ था उसने जब श्रवण किया तो जीवित हो गया, तो वो जाकर के शंकर की कृपा से अमर कथा जब श्रवण किया तो भविष्य में वो सुखदेव के नाम से हुए, और जीता जागता हुआ वो पक्षी जो है ना श्रिया के गर्भ में, वेदव्यास की पत्नी का नाम है श्रिया, उन्हीं के गर्भ में जब वो चला गया तो भविष्य में वो 14 साल तक पेट में रहा गर्भ में। तब महादेव जी की कृपा से जो है उनको वरदान मिला कि तुम्हें माया नहीं लगेगा, तो वही सुखदेव हुआ। तो वास्तविक में सुखदेव का जो अवतार है वो भगवान शिव हैं, शिव स्वरूप हैं, श्री हनुमान जी का और सुखदेव जी का दोनों का मिलता है। हनुमान जी भी शिव अवतारी हैं, 11वां रुद्र अवतार माने गए हैं, और भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं हनुमान बनकर के इसलिए आऊं कि रावण सबको जला सकता है लेकिन शिव को जला नहीं सकता, ये रावण सबको जला सकता है लेकिन शिव को जला नहीं सकता, तो शिव ही हनुमान बनकर गए, ये कथा है। क्योंकि भगवान शिव ने ही लंका को जलाया, राम ने नहीं जलाया, राम की महिमा जरूर था लेकिन शंकर ही हनुमान के रूप में आए और लंका को जलाए। तो उसने पूछा कि आप, मैं शंकर का परम भक्त, तो भगवान शिव ने कहा कि देखो जलाने का काम मैंने किया, ईश्वर जब अनुग्रह करता है तो जीव के जो अज्ञान है अविद्या है तमोगुण है ज्ञान रूपी अग्नि से उसको जला देता है, और जब जलाता है तो आपके पास दो विषय आता है, एक विक्षेप आता है एक दुख आता है। जब जीवन में दुख आ जावे तो भगवत कृपा है, और कोई विक्षेप आ जाए तब भी समझे कि भगवत कृपा है, ये दोनों में। इसलिए गीताकार ने कहा है नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगस सिद्धं कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान अग्नि से बढ़कर के कोई नहीं है, ईश्वर के दो रूप है, एक है तिरोधान शक्ति एक है अनुग्रह शक्ति, परमात्मा के दो रूप। तिरोधान शक्ति वो छिपा हुआ है और एक है अनुग्रह शक्ति वो कृपा करता है। ईश्वर विराट रूप में दो रूप में दर्शन देते हैं आपको। हम लोग वृंदावन में पढ़ते थे स्वामी वामदेव जी की यहां वेदांत परिभाषा पढ़ते थे, उस समय ये निश्चलानंद जी अभी शंकराचार्य बने हुए पूरी के, उस समय नहीं थे, तो कभी कभी उड़िया बाबा आश्रम में जो है ना वो पाठ पढ़ाते थे। तो उड़िया बाबा महाराज जी यही कहते थे कि आपके पास भगवान है, अवतारी पुरुष है, आप भगवान को क्यों ढूंढते हैं। तो एक ने कहा कि महाराज ये भगवान कैसे हैं, किस रूप में हैं। बोले भगवान के दो रूप है, एक नित्य अवतारी है और एक नैमित्तिक अवतारी है। नित्य अवतारी कौन है? माता पिता गुरु, ये ईश्वर के नित्य अवतार है, माता है, पिता है, गुरु है। और एक निमित्त को मान करके कोई अवतार, धर्म की हानि हो, अधर्म की वृद्धि हो, तो ईश्वर का कोई निमित्त बनेगा जो अवतार होता है। तो अवतार तो कभी कभी होता है, रावण के लिए हुआ, कंस के लिए हुआ, लेकिन नित्य अवतारी के रूप में माता जी है, पिताजी है, गुरु जी है, इनको यदि आप प्रणाम करते हैं तो नित्य ईश्वर को आप प्रणाम करते हैं। कैलाश के महामंडलेश्वर स्वामी दशम पीठाधीश्वर यही कहते थे, एक है सधवा नारी, एक है विधवा नारी। आपने सुना होगा, यही बहुत आते थे। सधवा नारी वो है जिसके हाथ में चूड़ी है, विधवा नारी वो है जिसके हाथ में चूड़ी भी नहीं है, सिंदूर भी नहीं है। तो जिसके हाथ में चूड़ी नहीं है ना, वो विधवा है, और जिसके हाथ में चूड़ी हो, सिंदूर हो, तो उसको भारतीय संस्कृति के अनुसार वो सधवा है। इसी प्रकार से जीव जो है ना दो प्रकार का है, एक सधवा है, एक विधवा है। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है और गुरुमुखी होकर के शास्त्र और धर्म के अनुसार चलता है, वो सधवा है, क्योंकि उसके हाथ में चूड़ी है, सिंदूर है, यही चूड़ी सिंदूर है वेद शास्त्र। और जो मनमानी मनमुखी है तो विधवा है, वो उसके पास न माता है, न पिता है, न गुरु है। बड़े अच्छे बोलते थे स्वामी जी जो है कि ये सधवा और विधवा का पहचान है। जिसके पास सिंदूर है वो उसको भी सधवा। इसलिए कभी कभी स्वामी जी जो है ना रावड़ी की बड़ी प्रशंसा करते, कहते धन्य है लालू की पत्नी रावड़ी जो सिंदूर लगावे। यहां से यहां लगाते थे ना, यहां से तो कहते बहुत अच्छा है, है? उसकी प्रशंसा रावड़ी की, कहते ये देखो ये यहां से सिंदूर, और कहां से आपने लगा दिया एक ठो लाल वाला, आजकल चिपक जाता है ना, तो उसको पसंद नहीं करते थे। वो हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन समय के अनुसार चलता है, वो परंपरा नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं राज विद्या। राज विद्या में षष्ठी तत्पुरुष समास है, विद्यानाम राजा राज विद्या ऐसे है। एक अर्थ तो ये है कि राज्ञ विद्या राज विद्या, जो राजाओं की विद्या, ये पहले पहले ये जो विद्या थी, नारायण पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिम चतत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुकम, भगवान वेदव्यास जी हुए, उसके पुत्र सुखदेव जी हुए। सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया, ये कथा है। देवी भागवत में सुखदेव जी के पुत्र हुए, बेटे हुए, बेटियां हुई, छह लड़के बच्चे को जन्म देने वाला एक सुखदेव देवी भागवत जी में है। और श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव हैं उनको स्त्री पुरुष का कोई ज्ञान ही नहीं है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। ऐसे ही सुखदेव जी हैं, लेकिन वो सुखदेव का जो दो रूप जो आया है भागवत पुराण में, वो कल्प के अनुसार है। आपका जो कल्प है ना उसके अनुसार है। सुखदेव जी का प्रत्यक्ष जो शिष्य है गौड़ पादाचार्य है, सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया तो पुत्र परंपरा की समाप्ति हो गई। यहां देखिए अब गौड़पाद से शिष्य परंपरा, दो परंपरा, एक शिष्य परंपरा एक बिंदु परंपरा। जो पुत्र संतान की जो परंपरा है वो बिंदु परंपरा है, और पुत्र संतान से रहित तो जो एक शिष्य परंपरा है उसको संस्कृत में नाद परंपरा बोलते हैं। ओंकार के द्वारा वेद जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो हुए, गौड़पादाचार्य हुए, उसके बाद जो है ना गोविंद पाद जी हुए, उसके बाद जो है ना भगवत पाद जी हुए, और भगवत पाद के बाद ये दशनामी गिरिपुरी भारती ये हुए। एक परंपरा ऐसे रहा, इसलिए दो परंपराओं में एक बिंदु परंपरा एक नाद परंपरा। मंत्र दीक्षा के द्वारा जो पुत्र बनाया जाता है शिष्य के द्वारा वो तो नाद परंपरा है, और नाद माने ओंकार कह करके जो उच्चारण की जाती है, और एक है शिष्य परंपरा। आपकी एक परंपरा चली आई शिष्य परंपरा। तो ये जो विद्या है ना ऐसे रहा राज विद्या, ये राजाओं के यहां ब्राह्मणों के यहां से जब ये चला गया ब्रह्म विद्या, तो राजा उस समय के राजा अश्वपति जी थे। अश्वपति महाराज जी के पास जब ऋषि मंडली आई छह, तो राजा अश्वपति जी को कहा कि आप हमको उपनिषद विद्या दें। तो एक ऋषि ने पूछा कि तुम्हारे यहां क्या विशेषता है कि आपके पास विद्या है, आप तो राजा है गृहस्थ हैं। तो अश्वपति जी ने कहा कि देखो मेरे पास एक विशेषता है, नमस्तेनो जनपदे न कदर्जो न मद्यपह नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वेरी स्वेरिनी कुत। छांदो के उपनिषद में आया ये। राजा अश्वपति जी ने कहा कि देखो नमस्तेनो जनपदे, मेरे यहां चोर नहीं है, मेरे देश में कोई चोर नहीं है। नमस्तेनो जनपदे न कदर्जह, कोई कपटी नहीं है, न मद्यपह, कोई नशा पीने वाला नहीं है, मदपान करने वाला नहीं है, न अना हिताग्नि, मेरे शहर में ऐसे ब्राह्मण नहीं है जो अग्निहोत्री न हो। ब्राह्मण तो है लेकिन अग्निहोत्री नहीं है, गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है, तो ब्राह्मणत्व तो शक्ति उसके पास नहीं होता। हमारे बनारस में आधे से आधे ब्राह्मण हैं। हम लोग जिससे भी विद्या पढ़े हैं ना सब पंडितों से पढ़े हैं अधिकांश, लेकिन जो विद्वान लोग हैं जो ब्राह्मण लोग हैं वो विद्या के बड़े ज्ञाता हैं, उनको बहुत ग्रंथ का अध्ययन। बामाचरण भट्टाचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखा। तो वो जो है ना बिना मछली खाए रहते नहीं थे, ये देखो वो कहते न्याय पढ़ना है तो मछली खाना पड़ेगा, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, ये सब बता देते। तो कभी कभी ये महापुरुष हमारे जो हुए हैं बड़े बड़े महर्षि विद्वान लोग बड़े विद्वान हुए हैं, तो यहां पर कहते हैं कि ये जो विद्या है, राजा अश्वपति ने कहा न अनहिताग्नि, मेरे घर में ऐसे ब्राह्मण नहीं है मेरे देश में जो अग्निहोत्री न करे, हवन न करे, जो नित्य गायत्री का जप न करे। ऐसे सुना है कि ब्राह्मणों को चाहिए कि पांच माला गायत्री का करना चाहिए, यदि वो कर सके तो पांच माला अथवा त्रयम्बकम् यजामहे इस मंत्र का करे अथवा गायत्री का करे। तो कहते हैं कि उसके पास सारा शक्ति आती है, ब्राह्मणत्व शक्ति ये होता है। कभी कभी आप तिरुपति बालाजी जाएं, वहां के पंडित जी जो है ना कैसे भी हो, लेकिन जब वो जनेऊ और माला और जब कपड़ा वपड़ा पहने रहते हैं तो लगता है कि कुछ ब्राह्मण है ये लोग, क्या त्रिपुंड क्या उनका रुद्राक्ष माला, और भगवान की आराधना करते हैं अपने भाषा में जो भी है, लगता है कि बड़े अद्भुत है। इसलिए जो है ना ये कहते हैं कि न अनहिताग्नि न स्वेरी, मेरे देश में कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं है। क्यों नहीं है? बोले न स्वेरी स्वेरिणी कुतः, जब व्यभिचारी स्त्री ही नहीं है तो व्यक्ति व्यभिचार बनेगा कहां से। इसलिए उसने कहा अश्वपति जी ने कि महाराज मेरे देश में ये है, न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपह न अनहिताग्नि न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। इसलिए राजा अश्वपति जी को जो है ना उपनिषद विद्या का पूरा ज्ञान था उसको। उपनिषद विद्या जो ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, वो तब आते हैं, ये पहले पहले महाराजाओं के पास था, जैसे राजा जनक जी के पास ये विद्या थी, अश्वपति जी के यहां था। इसका उदाहरण गीता जी के चौथवा अध्याय पर है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीख्या कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, आया है ना गीता जी में चौथा अध्याय पर। स काले नेह, ये कहा कि काल के अनुसार ये नाश हो गया। ये विद्या सूर्य भगवान को मैंने दिया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान विवस्वान मनवे, चौदह मनु में विवस्वान मनु को मैंने दिया और उस मनु महाराज ने इख्याकु को दिया। और उसके बाद जो है ना एवं परंपरा प्राप्त, वो परंपरा में चला। लेकिन काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, ऐसे समय आया कि वो नाश हो गया। इसलिए ये विद्या पहले क्षत्रियों में था, इसलिए कृष्ण कहते हैं राज विद्या। ये जो अध्यात्म विद्या है राज विद्या है। श्रीनाथ जी आप जाएंगे तो भगवान जब उठेंगे तो अलग संगीत बजता है वहां, जब वो सोएंगे तो अलग बजता है, जब चाय पिएंगे तो अलग बजता है। ईश्वर चाय पिए ना पिए, जो लगाते हैं भोग दूध हम उसको चाय कह लें तो उसका अलग बजेगा। जब वो शाम को बैठेंगे बैठकी करेंगे तो अलग संगीत। तो लगा एक कहता है, एक कह रहे थे कि धन्य है रणछोड़ भगवान, जितना मौज मस्ती में तुम हो ना तो दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा यहां के श्रीनाथ जी के, आ उधर जगन्नाथपुरी आप चले जाओगे तो वो भगवान की महिमा बड़ा विचित्र है। जगन्नाथ जी को कृष्ण बलराम जी को 9 बार भोग लगता है, देखो सुबह 4 बजे से रसगुल्ला खाएगा वो, उसकी भोग जगन्नाथ जी की। 6 बजे और क्या, 9 बजे और खिचड़ी, माने कृष्ण भगवान को जितना वहां। इसलिए वहां के लोग कहते हैं ये बहुत पेटू है, पेटू माने दामोदर है, इनके मां ने इनको रस्सी में इनके पेट को बांधा, क्योंकि तुम दामोदर हो इसलिए गोविंद दामोदर माधवेति। ये दामोदर शब्द बड़ा प्रिय है, दामोदर लंबोदर और ब्रुकोदर, ये संस्कृत में 3 आया। जिसको जसोदा जी ने रस्सी में बांधा उस भगवान को दामोदर कहते हैं। और भीम जी जितने भोजन करते थे उनको कम पड़ता था, तो ब्रिक जो भेड़िया होता है ना, भेड़िया जितना भी खाएगा ना उसका पेट नहीं भरता है। तो कुंती बुआ जी ने कहा कि तेरा नाम ब्रुकोदर है, तो भेड़िया के समान जो है ना इतना भयंकर है, पेट भरे नहीं, तो ब्रुकोदर। और जगदम्बा जी ने कहा कि गणेश जी क्या है, तो कार्तिकेय जी ने कहा कि थोड़ा हट जाओ दूध तो हम भी पी लें। तो गणेश जी जो है ना गोद में बैठे रहे गजाननम भूतगणादिशेविदम, तो उन्होंने कहा कि मैं हटूंगा तो नहीं, तो शंकर जी ने कहा तेरे नाम जो है ना ये जो है ना लंबोदर होगा, तेरा जो उदर है बहुत लंबा है, इसलिए एक का नाम पड़ गया लंबोदर, एक का नाम पड़ गया दामोदर, एक का नाम पड़ गया ब्रुकोदर। ये 3 उदर को लेकर के एक व्यवस्था जो है ना किया गया है, इसलिए ये तीनों की महिमा बड़ी अद्भुत है। तो भगवान यहां ये कह रहे हैं कि जितने राजा होते हैं ना उनकी जो महिमा है वो सम्राट है, राजा के ऊपर कोई होता नहीं है। इसलिए संतों को जो है ना महाराज बोलते हैं। स्वामी रामतीर्थ जब हवाई जहाज में जा रहे थे तो कोई राजा जा रहा था, उसने कहा मैं इसको नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले बादशाह जो है ना दूसरे में एक बादशाह जावे और उसके साथ कोई राजा जावे, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं स्वामी राम हूं, मैं तो दूसरे ही फ्लाइट में जाऊंगा, दूसरे जहाज में, उसमें नहीं गए। क्योंकि आप बादशाह हैं, राजा हैं। राजा क्यों हैं? तो कबीर बाबा ने एक जगह पर लिखा है, घट घट है मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट होए। उसने कहा सर्वव्यापक जब ईश्वर है तो मैं उस शरीर को प्रणाम करता हूं जिन शरीर ने उस ईश्वर का दर्शन किया है, जिनके शरीर में ईश्वर निवास करता है हृदय में। खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट होए। ये देखो, इसलिए यहां पर गीताकार का कहना है राज विद्या, ये राजाओं के यहां था। इसलिए राजा अश्वपति, राजा जनक इमम परंपरा प्राप्तम इक्ष्वाकु के यहां, लेकिन कृष्ण कहते हैं राजगुह्यम, गुह्यानाम राजह राजगुह्यम, ये अत्यंत प्रकाश वाला है। यहां राज शब्द का अर्थ है प्रकाश, लेकिन है बहुत प्रकाश, इसके इससे बड़ा प्रकाश कोई नहीं है। विद्याओं में राजा भी आप हैं, उपनिषद विद्या जो ब्रह्म विद्या है ये विद्याओं में राजा है। इसलिए आप जब ये स्वामी जी का पढ़ते हैं ना पांच श्लोक, हाँ, इसको यदि आप पढ़ लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि दूसरे ग्रंथ आप पढ़ोगे। क्या अद्भुत महाराज ने लिखा है, बड़ा अद्भुत लिखा है। पारसमणि जो है ना लोहे को सोना बना सकता है, ये नियम है। पारसमणि को आपने देखा कि नहीं देखा वो अलग चीज है, कोई देखा नहीं है, सुना है लोग, लेकिन पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, सुवर्ण बनाने की शक्ति उसके पास है, ये तो सही है। लेकिन लोहा को पारस नहीं बना सकता। पारस मणि लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन पारस पत्थर लोहे को पारस नहीं बना सकता। ये देखो, इसलिए शास्त्रों में इस बात को उठाया है कि अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो पारस मणि के समान है, लेकिन लोहे को पारस बनाने की शक्ति जो है ना अध्यात्म विद्या में है। ये सत्संग ही पारस पत्थर है, लोहा हमारा हृदय है। लोहा बड़ा कठिन होता है, लोहा में मूर्छा लगता है, ऐसे हमारे हृदय में अनेक प्रकार की चिंता है, अज्ञान है। इस हृदय जो है ना एक लोहा बन गया है, कठिन बन गया है। इसको यदि सोना बनाने का काम कोई करता है तो सत्संग के द्वारा ही होता है, स्वाध्याय के द्वारा ही होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं राजगुह्यम, अत्यंत प्रकाश युक्त है। लेकिन एक सुविधा दिया, एक लक्षण दिया, इदम पवित्रम, अत्यंत पवित्र है। उपनिषद जो विद्या है ना वो अत्यंत पवित्र है। जिस समय भगवान कृष्ण विदुर के घर में आए तो विदुर को पता नहीं था, विदुर तो दुर्योधन की सभा में थे, उनकी पत्नी थी। जब गए तो कहते हैं कि उनके कुटिया में दो चार केले लगे हुए थे और केला की सब्जी जो है ना उसने बनाया। और भगवान जब खाने लगे तो विदुरानी, ये कथा तो यही है कि जब वो खाने के लिए चले तो कृष्ण को देख रही है और ये खा रहे हैं और क्या खिला रही है वो भूल गए हैं, उनके देवी भूल गई है। और इस समय विदुर जी आए तो विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको भोजन कैसे लगा? बड़े बड़ा स्वादिष्ट लगा, लेकिन विदुर एक वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया। बोले क्या वरदान? बोले कोई भी मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो विदुर जी ने कहा ये जो चटाई है ये जो चटाई में हम लोग बैठे हैं, दो आदमी की बैठने की व्यवस्था है इसमें। हम बैठेंगे, हमारे देवी बैठेगी। आप भगवान वरदान दो कि इसमें तीन आदमी बैठ जावे, यही वरदान दो। कृष्ण ने कहा ये कोई वरदान होता है, थोड़ा सरक जाओ तो तीन आदमी बैठ जाओगे। ये तो आप बड़े बड़े होकर के बैठे हैं तो दो आदमी हैं, अरे तीन आदमी के लिए। तो विदुर जी ने कहा महाराज यही वरदान है, और मेरे जीवन में कोई वरदान नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान के सामने यही वरदान यदि साधक करे तो कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, उससे बड़ा पवित्र भाव संसार में कुछ नहीं है। साधना सदन में त्यागमूर्ति गणेशानंद जी हुए ना, जो बड़े महापुरुष, एक कथा सुनाते थे, आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति जो है ना अपने घर में काम करता था और रोज काम धाम करके आवे और पत्नी को भी गाली देवे, बच्चों को भी गाली देवे, लड़के लड़कियों को गाली देवे, एक घंटा तक गाली गलौज करे, फिर रोटी वोटी खावे, सोए, बहुत परेशान। घर वाले जाते जाते जो है ना कभी एक संतों के पास गए और वो संत उसके दरवाजे पर आया एक दिन, तो सब लोगों ने कहा कि आदमी से हम बहुत परेशान है महाराज, ये सबको गाली देता है, काम तो करता है। तो उन संत ने कहा कि सुनो, एक गुरु दीक्षा ले लो। और उसने कृष्ण भगवान की एक मूर्ति दिया कि छोटी सी फोटो, और उस सज्जन को कहा कि देखो जी, तुम यदि गाली गलौज दोगे तो इसको देना, जो देना, जो भी बोलना इसको कहना, ये ले लो। ठीक है, शाम के समय आवे अपने काम करके, नौकरी करके, और बैठ करके कन्हैया जी को गाली देना प्रारंभ करे। वो गाली रोज देवे, गांव की घटना बता रहे थे, तो गाली देते देते थक जावे, फिर खावे पीवे सोए। एक महीने के बाद एक ब्राह्मण आया तो देखा कि गाली दे रहा है भगवान को। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि देखो जी, ये भगवान कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, इनको तो गाली देता है, बड़ा पाप लगेगा। उसने कहा कि मुझे ज्ञान नहीं है, गुरु जी ने बताया है कि जो कहना इसको कहना। तो उसने कहा ये फोटो को दे दो, हम घर में ले जाते हैं। घर में वो ले गया, पूजा किया, पाठ किया, रात्रि के 12 बजे वो जो फोटो जो कृष्ण है ना उसको दिखाई पड़ा। और कृष्ण भगवान बांके बिहारी कह रहे हैं कि देखो जी पंडित जी, जो तू भजन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, अच्छा करता है, तुमसे भी हम बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हमारे जो पहले वाला जो भक्त था ना, वो जैसे पूजा पाठ करता था ना, ऐसे तेरे में नहीं है, इसलिए अच्छा है कि वहीं छोड़ दो हमको, हम उससे ज्यादा प्रसन्न हैं, आपसे प्रसन्न है लेकिन उससे ज्यादा। उसने कहा गाली गलौज देता है? बोले नहीं, वो गाली गलौज नहीं देता, आप छोड़ दो वहां। वो लेकर के गए और ब्राह्मण जो उसको प्रणाम किया, बोला कि महाराज जैसे तुम करते हो ना, और तुम्हारे ऊपर जैसे भगवान प्रसन्न है वैसे नहीं है। तो वो भक्त को सुनाई पड़ रहा है, यद करोषी यदश्नासी यद जुहोषी यद ददासी यद तपस्यसि कुंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कह रहे हैं कि यद जो तू तपस्या करता है, यद करोषी जो तू कर्म करता है, यद जुहोषी जो हवन करता है, यद ददासी जो तू दान देता है, ये किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा। आप जो भी सत्कर्म करेंगे बुद्धि के द्वारा, और जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। ये देखिए, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो बुद्धि कौन है? ईश्वर। यदि सद्बुद्धि आ गया तो ये ईश्वर है, वो ईश्वर की कृपा है। इसलिए उन्होंने कहा यद करोषि यदश्नासी, जो आप भोजन करते हैं, जो खाते हैं, जो सोते हैं, तद कुरुष्व मदर्पणम्, सब कुछ परमेश्वर का है। ये भाव जब आ जाता है तो गीता जी में यहां इसको कहते हैं पवित्रम। वो साधक बड़ा पवित्र हो जाता है, क्योंकि परमात्मा पवित्र है। हरिद्वार के गंगा जी में स्नान करने आप गए और हर की पेढ़ी में डुबकी लगाई और गंगा जी की पूजा आपको करनी है तो पानी कहां से लाएंगे? गंगा से। गंगा की पूजा गंगा जल से, ईश्वर की पूजा उसकी सद्बुद्धि से। जो सद्बुद्धि ईश्वर ने दिया है ना, वही सद्बुद्धि यदि हो जावे तो ईश्वर की पूजा है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। पूजा ते विषय उपभोग, ये विषय जो मैं भोग करता हूं धर्मपूर्वक, यही आपकी पूजा है। इसलिए यहां पर कहते हैं प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम। ये प्रत्यक्ष के द्वारा जो है ना, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का अर्थ लिखते हैं सुसुखम। कोई योगासन नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, ये जो उपनिषद विद्या है ये बड़े सुख के द्वारा जाना जाता है। एकाग्र भाव से बैठ करके नित्य सत्संग का श्रवण करे, स्वाध्याय का श्रवण करे। वृंदावन धाम में हम लोग रहते थे, उस समय की बहुत पहले की बात है, बिंदु जी की जयंती हुई, बिंदु महाराज जी की। गोस्वामी बिंदु नाम के एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, राम किंकर जी के गुरु जी थे वो। यहां शव मुझे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहां शव मुझे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूं ये झगड़ा, मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। ये बिंदु जी का है। अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा। बिंदु जी ने मोहन मोहिनी नाम की एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक में बड़ा अद्भुत भाव उन्होंने भगवान को दिया। यहां सब मुझे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूं? सब कहते हैं कि मेरा है, पुत्र पत्नी परिवार, लेकिन मैं किसका हूं ये समझ में नहीं पाया। इसलिए ईश्वर मैं हूं किसका, इसको जानना यदि है तो आप परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उस समय स्वामी अखंडानंद आश्रम में दो चार गऊ रहते थे, ऐसे गऊ तो बहुत थे। तो एक दो बैल को देखा कि श्री राम जय राम जय जय राम होने लगा ना, तो आकर के गेट के सामने आ जाते थे और एक घंटा तक जो है ना, जो कथा चलती थी नृत्य गोपाल मंदिर में, वो सुनते थे और जैसे पूर्ण मदह पूर्ण मिदम हुआ तो उठ करके चले जाते थे। ये देखिए, ये गौ की बात है। इसलिए कभी कभी जो है ना, जब गौ को भी ये सत्संग इतना प्यारा है तो कृष्ण भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सुखपूर्वक, ये जो विद्या है इसको सुखपूर्वक ही जाने। यहां पर योगासन प्राणायाम इत्यादि जो विषय है, दुखपूर्वक जो है ना साधना की बात नहीं है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्यम, ये अव्य है, सुसुख है, लेकिन एक हेतु दिया अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मनि। हे परंतप, शत्रु को तपाने वाले, अर्जुन के कई नाम में एक नाम है परंतप, जो शत्रु को जो है ना भय देने वाले थे। इसलिए कृष्ण भगवान बार बार यही कहते थे ना कि तू शत्रु को कपाने वाला है। क्यों? महादेव जी को जो हराने वाला है। निंदंतस्तव सामर्थम ततो दुखतरो न किम, हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। इसलिए अश्रद्धाना पुरुषः, जो श्रद्धालु नहीं है धर्मस्य अस्य परंतप, इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं जान सकते। श्रद्धालु ही जान सकता है, जिसमें श्रद्धा है श्रद्धा का सीधे सीधे लक्षण है कि वेदांत वाक्य में विश्वास और गुरु वाक्यों में विश्वास। गुरु वाक्यों में विश्वास करना है सबसे बड़ी श्रद्धा है। स्वामी जी आए कैलाश के, मंडेश्वर जी आए ना, तो प्रेमपुरी में जब आते थे तो किसी सज्जन के घर के लड़का जो है ना अमेरिका से नहीं आ रहा था, वो लंदन अमेरिका में रहता था। उसके परिवार ने कहा कि महाराज 20 साल हो गया, हम बूढ़ा बूढ़ी हैं, क्या करें। बोले ऐसे करो, कुछ संतों को अन्नदान दे दो आप, ठीक हो जाएगा। तो दिया उसने। एक महीने के बाद जो है ना उसका लड़का आया लंदन से। उसने पूछा उसके घर वाले कि क्यों आए, तो चला गया। बोले कि 5-7 दिन हो गया, हमारे जो बंगला था उसमें एक भूत आता था, बहुत बड़ा प्रेत, और हम जब सोते थे तो एक गले को दबाता था वो। कहा कि ये बंगला मेरा है, तू चला जा घर में। तो मैं डर के मारे यहीं चले आया, अब जीवन में मैं लंदन नहीं जाऊंगा, अब आपके पास ही रहूंगा। तो उसको पूरा विश्वास हो गया ये महाराज जी के आशीर्वाद है। और वो अभी भी, वो कौन नाम नहीं जानता, लेकिन अभी भी कैलाश आश्रम में वो लोग अन्न क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ देते हैं। तो ये श्रद्धा जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे शास्त्रों में कहा है, आगे फिर करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम।